नमस्कार, आज हम एक बहुत ही खास पुस्तक पर गहराई से बात करने वाले हैं, प्रज्ञावतार की विस्तार प्रक्रिया। ये पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने 1988 से 90 के बीच जो क्रांति धर्मी पुस्तकमाला रची थी, उसी का एक अहम हिस्सा है।
जी हाँ, और याद होगा पूज्य गुरुदेव ने वसंत पंचमी 1990 को वंदनीय माता जी से कहा भी था,
हाँ, कि उनका ज्ञान शरीर ही जीवित रहेगा और इस साहित्य को, उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाना है।
बिल्कुल, तो इसी नजरिए से आज हम इस पुस्तक के विचारों को समझने की कोशिश करते हैं।
तो ये पुस्तक किस बारे में है, इसका केंद्र बिंदु क्या है?
ये पुस्तक मुख्यतः एक महान परिवर्तन के दौर, जिसे पूज्य गुरुदेव ने युग संधि कहा है।
युग संधि मतलब दो युगों का मिलन।
हाँ, एक तरह से। और इस परिवर्तन के लिए एक दैवीय योजना प्रस्तावित की गई, युग संधि महापुरुषण। इसका असल मकसद था युग परिवर्तन के लिए एक सही माहौल, एक वातावरण तैयार करना।
अच्छा।
और ये कोई इंसानी योजना नहीं थी? नहीं, इसे महाकाल का संकल्प माना गया, जिसमें शांति कुंज बस एक माध्यम बना।
तो पुस्तक के अनुसार आज जो दुनिया में इतनी समस्याएं या अवांछनीयता दिखती है, उसका कारण क्या है?
पूज्य गुरुदेव का विश्लेषण बहुत साफ है। कारण है ज्यादातर लोगों का गलत तरीके से सोचना, जिसे उन्होंने अचिंत्य चिंतन कहा।
अचिंत्य चिंतन मतलब जो नहीं सोचना चाहिए वो सोचना।
हाँ, और फिर उसी गलत सोच के हिसाब से गलत काम करना, यानी अकरणीय क्रियाकृत्य। जब ऐसे लोगों की संख्या बढ़ जाती है तो समाज में गड़बड़ी आती है।
और फिर इसका समाधान जाहिर है सोच और कर्म को बदलना होगा।
बिल्कुल, समाधान है इस बहुमत को बदलना। सतयुग जैसी अच्छी परिस्थितियां तभी बनती हैं जब समाज में देने की भावना लेने की भावना से ज्यादा मजबूत हो, मतलब दैत्य वृत्ति से देवत्व की ओर जाना,
लेने से ज्यादा देना। ये बदलाव आएगा कैसे, क्या कोई प्रक्रिया है? वो मत्स्यावतार वाला उदाहरण याद आ रहा है मुझे।
हाँ, वही प्रक्रिया वैसी है जैसे एक छोटा सा बीज एक विशाल पेड़ बन जाता है, या जैसे मत्स्य अवतार ने छोटे रूप से शुरुआत की थी।
मतलब छोटे स्तर से शुरू होके फैलना।
जी, एक केंद्र जैसे शांति कुंज से शुरू होकर विश्व भर में फैलना। और इसमें संघ शक्ति मतलब मिलकर काम करने की ताकत बहुत जरूरी है।
जैसे वो चिड़ियों ने मिलकर जाल उठा लिया था।
हाँ, या जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, एकता में ही शक्ति है।
और इसी बड़े बदलाव के लिए वो योजना थी युग संधि महापुरुष चरण। इसका लक्ष्य तो बहुत बड़ा रखा गया था।
हाँ, बहुत बड़ा। शुरू में सन 2000 तक 1 करोड़ प्रतिभागी मतलब यजमान और 1 लाख दीप यज्ञ का लक्ष्य था।
1 करोड़? फिर तो इसे बढ़ाया भी गया था शायद।
जी हाँ, लोगों का उत्साह देखकर लक्ष्य दुगना कर दिया गया, 2 करोड़ प्रतिभागी और 2 लाख दीप यज्ञ।
अरे बाप रे, ये तो उस समय के हिसाब से अकल्पनीय लगता है।
बिल्कुल, और इसे 2 हिस्सों में बांटा गया, 1995 तक 1 करोड़ और 1 लाख दीप यज्ञ, और फिर अगले 5 साल में उतने ही और। और इसकी पूर्णाहुति भी अलग तरीके से सोची गई थी, मतलब एक जगह नहीं।
हाँ, ये बहुत खास बात थी, पूर्णाहुति किसी एक जगह नहीं बल्कि लाखों स्थानीय केंद्रों पर होनी थी। विकेंद्रीकरण पर जोर था ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आसानी से जुड़ सकें।
पूज्य गुरुदेव ने तो ये भी कहा था कि अगर वो शरीर से न भी रहें तब भी मार्गदर्शन करते रहेंगे।
जी बिल्कुल, उन्होंने आश्वासन दिया था कि वो सूक्ष्म शरीर से मार्गदर्शन करते रहेंगे और ये योजना महाकाल पूरी करवाएंगे।
पर इसमें व्यक्ति की भूमिका बहुत अहम मानी गई।
किन व्यक्तियों की, क्या कुछ खास लोगों की?
अखंड ज्योति पत्रिका के जो पाठक थे, लगभग 5 लाख, जिन्हें परिजन कहा जाता है, उन्हें संभावित प्रचंड योद्धा माना गया। उम्मीद थी कि कम से कम 1 लाख लोग इसमें सक्रिय भूमिका निभाएंगे।
लेकिन क्या सिर्फ भागदौड़ करना काफी था?
नहीं नहीं, पूज्य गुरुदेव ने साफ कहा कि सिर्फ शारीरिक मेहनत काफी नहीं है, इसके लिए असाधारण मनोबल चाहिए, आत्मबल चाहिए।
और वो कहाँ से आएगा?
वो दैवी कृपा और आदर्शवादी जीवन जीने से, मतलब पुण्य परमार्थ से मिलता है, पात्रता इसी से बनती है।
अच्छा, पात्रता की बात आई तो पुस्तक में वो 3 जानकारियां मंगाने का भी जिक्र है ना, जन्म विवरण, फोटो, हस्तरेखा। इसका क्या मतलब था, क्या भाग्य बताने के लिए?
नहीं, बिल्कुल नहीं, उद्देश्य भाग्य बताना कतई नहीं था। ये दरअसल व्यक्तियों की खासियत, उनकी क्षमताएं और रुझान समझने का एक तरीका था,
ताकि उन्हें सही काम सौंपा जा सके।
हाँ, ताकि सही मार्गदर्शन और जिम्मेदारी दी जा सके। पात्रता के 3 आधार बताए गए थे। पहला, उत्साह से मेहनत करना। दूसरा, काम में पूरी तरह डूब जाना, मतलब तन्मयता।
और तीसरा?
तीसरा, उत्कृष्टता के लिए गहरी लगन, मतलब हमेशा बेहतर करने की चाह। दैवी मदद भी इन्हीं गुणों पर निर्भर करती है, ऐसा कहा गया।
तो फिर समय की महत्ता पर भी जोर दिया गया होगा?
बहुत ज्यादा। पूज्य गुरुदेव ने चिताया था, ये समय चूकने का है नहीं। कहा कि ऐसी युग बदलने की घड़ी हजारों लाखों साल में कभी आती है।
और जो चूक गए
वो पछताएंगे। इसे ऐसा खास समय बताया गया जब भगवान खुद अपने भक्तों से मदद मांगते हैं, जैसे राम ने हनुमान जी से मांगी, कृष्ण ने अर्जुन से।
तो लोगों से क्या करने को कहा गया, आवाहन क्या था?
आवाहन था कि भाई कायरता, संकीर्णता, स्वार्थ छोड़ो और महाकाल के इस नव निर्माण के काम से जुड़ो। ये उन लोगों के लिए मौका था जो सच में जीवंत हैं, जागे हैं।
और करना क्या था, मतलब रोजमर्रा में?
रोज करीब 2 घंटे का समय देने को कहा गया।
2 घंटे? उसमें क्या क्या शामिल था?
उसमें दैनिक साधना थी, 108, गायत्री मंत्र जप, उगते सूरज का ध्यान तेजस्विता के लिए,
और
शांति कुंजिया घर के मंदिर में जल रहे अखंड दीपक का मानसिक ध्यान, साथ ही ज्ञान यज्ञ पर बहुत जोर था।
ज्ञान यज्ञ
मतलब
21वीं सदी के नव निर्माण वाला साहित्य जो हर महीने 6 पुस्तकों के रूप में आता था, उसे खुद पढ़ना और कम से कम 5-10 लोगों को पढ़ाना या सुनाना।
अच्छा,
विचारों का प्रसार।
वो 20 पैसे रोज वाले अंशमान का भी जिक्र था शायद।
हाँ,
वो ज्ञान प्रसार के काम में एक सांकेतिक सहयोग के लिए था।
और इस सब का अंतिम लक्ष्य क्या था?
लक्ष्य था कि कम से कम 1 लाख ऐसे आगे चलने वाले लोग, अग्रदूत तैयार हों, जो अगले 5 सालों में करोड़ों लोगों तक ये युग चेतना का संदेश पहुंचा दें। ये कम से कम का आंकड़ा था। तो अगर हम सार देखें तो ये पुस्तक कहती है कि एक बहुत बड़े बदलाव का समय चल रहा है। इसे कोई इंसान नहीं बल्कि दैवीय सत्ता चला रही है,
और इसमें हमारी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है।
हाँ, खासकर उन लोगों की जिनमें पात्रता है, मतलब सही दिशा में मेहनत करने का जोश, लगन और आदर्शों पर टिके रहने की निष्ठा।
और जैसा पूज्य गुरुदेव ने कहा, ये उनके ज्ञान शरीर, उनके विचारों को फैलाने का एक ठोस तरीका है। ये सिर्फ कोई सपना नहीं बल्कि एक सोची समझी योजना है जिससे दुनिया में अच्छाई बढ़े और बुराई कम हो।
बिल्कुल।
तो सोचने वाली बात यह है कि इस असाधारण समय में हम अपनी ताकत, अपनी क्षमताएं कहां लगा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, ये सवाल ये पुस्तक हम सबके सामने रखती है।